समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम आज के अंक में याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जन्मदिवस या जयंती है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सरफिरोजी, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, बहुत सारे फेस्टिवल्स कुछ शुरू हो गए, नवरात्र शुरू होने वाले हैं और रमजान खत्म होने वाला है, ईद आने वाली है, तो आई एम श्योर कि सब लोग जो है इस वक्त दे आर बिजी शॉपिंग एवरीवेयर। और दिन तो काफी गर्म है लेकिन शाम में सब लोग मार्केट्स की तरफ भाग रहे हैं आजकल, इज़न्ट इट? वेल, हम लोग देखेंगे और इस शो में कि क्या कुछ हलचल चल रही है देश में, एंड वील गो टू आर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हु आर देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे इन डेटलाइन इंडिया। एक ऐसा मौजू, एक ऐसी चीज पे जिसमें मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी एटलीस्ट अपना दिन जो है शुरू करता है वो उसी चीज से करता
और
है।
और सारा कहना चाहिए कि मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लूपर्स दे रही हूँ कि हमारे श्रोताओं को आज शो को सुनते समय एक चाय का कप जरूर हाथ में रखना चाहिए। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आगे पता चलेगा,
मेरे ख्याल से अब पता चल ही होगा। As you said, it was a blooper. Okay, let's start with the headlines first. President Draupadi Murmu calls for collective efforts towards conservation of environment.
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 माओवादी मारे गए।
ISRO announces successful completion of 1000 hour life test on its 300 mN stationary plasma thruster.
म्यांमार भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 के पार, भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी, जल्दी ही दो खेप और भेजी जाएंगी।
And in IPL cricket, Gujarat Titans are to take on Mumbai Indians in Ahmedabad this evening. And now it's time for Dateline India, and as we had said that today we're going to talk about a thing without which हम लोग का दिन ही नहीं बनता है। और सर फिरोजी ने ऑलरेडी कह दिया कि एक कप चाय जरूर हाथ में आपके होना चाहिए। यस, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन टी टुडे। एंड वेल, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर इन 2024।
हर लम्हे को पुरसुकून कर देती है ये चाय, तो दिसंबर को भी जून कर देती है।
Recent data released by the Tea Board of India indicates that India has emerged as the second largest tea exporter in the world in 2024, surpassing even Sri Lanka and trailing behind only Kenya, which retained the top position. India exported 254 million kilograms of tea in the year 2024, marking a significant jump from its 231 million kilogram exports in 2023. The tea exports in 2024 generated a revenue of 7,112 crore rupees, reflecting a significant boost to the industry.
जी सायरा, और देखें तो बाकी दुनिया के लिए भले ही चाय एक पेय पदार्थ हो, ड्रिंक हो, लेकिन हमारे लिए जैसे कि आपने बताया, इसके बगैर तो हमारा दिन ही नहीं शुरू होता। और खास बात यह है कि इसका कोई तय टाइम भी नहीं होता, आप कभी भी चाय का एक कप, आपके दोस्त आ गए उनके साथ गपशप करने लगे, कोई घर में आ गया तो सबसे पहले आप चाय ही उसको सर्व करते हैं। तो हमारे लिए भले दिन की शुरुआत चाय के बिना ना हो, इसका कोई तय वक्त भी नहीं है। और हमारे लिए चाय दोस्ती और मेलजोल का प्रतीक है, जो हर घर हर चाय की दुकान में दिखाई देता है। और जैसा हमने बताया कि हमारे घर अक्सर जब मेहमान आते हैं तो हम सबसे पहले चाय ही उनको सर्व करते हैं, चाय से ही उनका स्वागत करते हैं, या फिर अगर हमें दोस्तों के साथ गपशप करनी है तो तब भी हम किसी चाय की टपरी पर पहुंच जाते हैं। और कहें तो एक चाय की चुस्की पर बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं, और दोस्तों से अपने दिल की बात हम एक चाय की टपरी पर जाके चाय के कप के साथ करते हैं।
और वेरी ट्रू. और आपने खुद बताया कि चाय का एटलीस्ट हमारे हिंदुस्तानी लाइफ में कितना बड़ा रोल है, isn't it? And what is interesting, sir Firozi, that tea was actually brought to India by the English.
जी बिल्कुल.
और बड़े बूढ़ों से सुनते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी चाय, तो वो फ्री सैंपल्स लोगों को ऐसी देती थी, और फिर तो सबको ऐसा एडिक्शन हो गया चाय का कि वो आज तक आए.
और देखें जाए तो हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट में इतने आगे हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि चाय केवल चाय की पत्ती पानी में डालकर और उबाल कर पी जाती थी, और फिर हमने उसमें एक्सपेरिमेंट करके उसमें दूध को भी ऐड कर दिया, फिर तमाम तरह के मसाले उसमें ऐड हो गए.
That's true. Well, English tea, of course, we know that. I mean, not just Indians. Many people used to add milk, but हाँ लोग जो एकदम ही चाय के शौकीन हैं वो लोग कहते हैं black tea ही original है. But जैसे भी आप पिए, चाय तो चाय है. And if you will give some, you can say an outline on the history of tea.
जी बिल्कुल. बात करें चाय की तो भारत में चाय उद्योग लगभग 170 साल पुराना है. रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में ब्रह्मपुत्र घाटी में जंगली रूप से उगने वाले चाय के पौधों की खोज की. 1838 में असम से पहली भारतीय चाय सार्वजनिक बिक्री के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजी गई. इसके बाद पिछली सदी के 50 और 60 के दशक के बीच इसे देश के अन्य हिस्सों में भी फैलाया गया. हालांकि कुछ खास मिट्टी और जलवायु आवश्यकताओं के कारण इसकी खेती देश के कुछ ही हिस्सों तक सीमित थी.
That's true. Tea plantations in India are mainly located in rural hills and backward areas of northeast and southern states. Major tea growing areas of the country are concentrated in Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala.
और अन्य क्षेत्र जहां चाय उगाई जाती है उनमें कर्नाटक, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी शामिल हैं. हालांकि भारतीय असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय को दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय में से एक माना जाता है.
The tea industry provides gainful direct employment to more than a million workers, mainly drawn from backward and socially weaker sections of the society. It is also a substantial foreign exchange earner and provides sizable amount of revenue to the state and central exchequer. In fact, tea plantations में अगर आपने देखा हो, बहुत ही revolution जब tea plantations आए तो वो हुआ कि ज़्यादातर जो जब tea को harvest किया जाता है tea leaves को,
जी.
तो 99% are women. Why? Because tea leaves are so tender, तो ये कहा जाता है कि क्योंकि औरत के हाथ
नाजुक,
वो उतनी मजबूती नहीं होती, तो आराम से तोड़ सकती हैं और वो टूटती नहीं, उसका फ्लेवर नहीं खराब होता. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट टी प्लांटेशंस आर आल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू सो मेनी वुमेन. एंड लेट्स लिसन टू अ वेरी नाइस मलयालम सॉन्ग ऑन टी. What a beautiful melodious song on tea. And even though I don't fully understand Malayalam, लेकिन I'm sure कुछ listeners भी समझ रहे होंगे कि जब तक चाय की चुस्की ना मिले तो आँखें खुलती नहीं. Well, unlike most other tea producing and exporting countries, India has dual manufacturing base. India produces both CTC and orthodox teas in addition to green tea. And Sir Firozi, now let's tell our listeners about these styles of tea production.
Ji, Saira.
That orthodox tea and CTC tea are different styles of tea production or tea processing, in fact, and the main styles that are used in India, in Indian tea making. Orthodox tea refers to loose leaf tea produced using traditional methods, which involves plucking, withering, rolling, oxidation, fermentation, and drying. Whereas CTC is, you can say it stands for crush, tear, and curl, or cut, tear, and curl. It is a method of processing black tea in which tea leaves are passed through a series of cylindrical rollers with the serrated blades that crush, tear, and curl the tea into small, even-shaped pellets.
Ji, bilkul, Saira. रूढ़िवादी चाय निर्माता चाय प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया के दौरान पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें आमतौर पर अधिक समय लगता है और इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है, भी आपने श्रोताओं को बताया। जबकि सीटीसी चाय निर्माण प्रक्रिया चाय की मानक गुणवत्ता का उत्पादन करने का एक तेज तरीका है।
That's true. India exports tea to more than 25 countries throughout the world. And Russia, Iran, UAE, US, UK, Germany and China are some of the major importers of tea from India. And some of India's other tea export destinations are Poland, Canada, Saudi Arabia, Egypt, Afghanistan, Bangladesh, China, Singapore, Sri Lanka, Japan, among other countries. Also, let's tell our listeners about a unique tea of India, the Darjeeling tea.
जी बिल्कुल, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग को 2003 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया। ये टैग इसे इसकी अनूठी चाय उत्पादन के लिए दिया गया। दार्जिलिंग चाय दुनिया की उन कुछ चायों में से एक है जिन्हें इसकी विशिष्टता के लिए GI टैग दिया गया और ये दुनिया की सबसे महंगी चाय में से भी एक है। GI टैग ने दार्जिलिंग चाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद की और इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय को बढ़ावा देने में भी मदद की।
That's right. The Darjeeling tea plant takes growers 1 to 6 years to mature, and it can live up to 100 years with proper care. It is able to withstand severe winters, extended droughts, and also high altitudes of the region. The region has a cool and moist climate with frequent rains and mist, which is ideal for the growth of tea plants. The combination of high elevation, cool temperatures, and high rainfall results in a delicate and complex flavor. The tea also has a unique aroma that is due to the combination of specific plant genes and soil chemistry in the Darjeeling region. In fact, one of the most expensive teas also comes from Darjeeling, and I don't remember the figures exactly. लेकिन recently ही ये newspaper में आया था कि न जाने कितने लाख रुपए की वो सिर्फ एक किलो चाय
बिकी। जी बिल्कुल, और दार्जिलिंग चाय का उत्पादन भी पारंपरिक रूढ़िवादी प्रसंस्करण पद्धति के अनुसार ही किया जाता है।
That's right. And well, if we talk about the Tea Board of India, it was set up in 1953. For the development of tea industry in India, it started functioning in 1954. The board is located in Kolkata and has 17 offices across India.
ये बोर्ड चाय अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न नियंत्रण आदेशों के माध्यम से उत्पादों, निर्माताओं, निर्यातकों, नीलामी आयोजकों और गोदाम मालिकों पर नियंत्रण रखता है।
Yes, तो मेरे ख्याल से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, अगर आपने उसी वक्त चाय बनाना शुरू की थी तो अब तक तो आपकी चाय की प्याली बन गई होगी। आप उसकी चुस्कियां लेते हुए हमारे शो को सुन रहे होंगे। That's all in Dateline India.
चलिए श्रोताओं, अब आपको लेकर चलें देश की परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है। कहां से शुरू करें सायरा?
Well, we are going to the western part of the country. We are going to Gujarat, and India is a land where rivers are worshipped. In Gujarat, the famous pilgrimage to honor river goddess Narmada, which is known as Uttar Vahini Panchkoshi Narmada Parikrama, which has begun today with a great of religious fervor and enthusiasm. This parikrama will be held until the 27th of April and will witness participation from devotees from Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and many other states. Our correspondent has filed this report.
Flowing through Vadodara and Narmada districts, Narmada River takes a northward turn for about 6 kilometers in the Narmada district. In reverence, the Uttar Vahini Panchakroshi Narmada Parikrama is held every year during the month of Chaitra. Narmada is the only river in the world which is honored with this kind of a unique pilgrimage. Every year during the month of Chaitra, devotees from all over the country gather here to take part in this spiritual journey. The Parikrama route is approximately 14 kilometers long, which starts from Ranchodrai Temple in Rampura and passes through Mangarol, Kuwar, Sheherao, Tilakwada Ghat and Ranganvasan village. Devotees cross the Narmada river by boat and returns to Rampura Ghat for the sacred bath. This year, anticipating a large influx of devotees, Gujarat Pavitra Yatra Dham Vikas Board has invested 3.82 crore rupees in developing essential facilities along the 14-kilometer parikrama route, including the CCTV cameras for the security and convenience of the devotees. Starting from Amarkantak in Madhya Pradesh, the holy Narmada Maya enters Gujarat from Hafeshwar Mahadev in Kavan Taluka of Chota Udaipur district. The river meets Arabian Sea at Gulf of Khambat near Bharuch. For Parikrama, this is Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल करते हुए भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इस ऐप की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रदेश के संकटग्रस्त जल स्रोतों जैसे धारे, नाले और नदियों को पुनर्जीवित करना और स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण में सीधे तौर पर शामिल करना है। उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए की गई इस पहल की और जानकारी दे रही हैं देहरादून से हमारी संवाददाता साक्षी सिंह।
इस ऐप के जरिए आम जनता अपने आसपास के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकती है, जिससे सरकार और प्रशासन समय पर इनका उपचार कर सकेंगे। भागीरथ ऐप लोगों की भागीदारी से जल स्रोतों के संरक्षण को सरल और प्रभावी बनाएगा। आशा है कि जनता के सहयोग से प्रदेश के हजारों जल स्रोत फिर से जीवित हो सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि जल संरक्षण के लिए राज्य भर में सामुदायिक जागरूकता और सक्रिय भागीदारी का अभियान है। यह ऐप उत्तराखंड की जनता को सीधे प्रशासन से जोड़ने और प्रदेश की बहुमूल्य जल संपदा को सुरक्षित करने का बड़ा माध्यम बनेगा। इस पहल के साथ स्प्रिंग एंड रिवर रेवोल्यूशन अथॉरिटी यानी सारा भी जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। पिछले वर्ष सारा ने लगभग 6,500 जल स्रोतों का संरक्षण कर 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचय किया। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें पौधारोपण, चाल खाल का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न प्रयास शामिल हैं। अब ऐप के माध्यम से जनता की सक्रिय भूमिका के साथ उत्तराखंड का जल संरक्षण अभियान एक नए मुकाम पर पहुंच सकता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
एंड नाउ वी हेड टुवर्ड्स सिक्किम, वेयर द रिवाइवल ऑफ बैरन लैंड फॉर कल्टीवेशन इन पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट हैज सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड बैरन लैंड्स इनटू थ्राइविंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स। दिस इनिशिएटिव इज बूस्टिंग सस्टेनेबल फार्मिंग, एनहांसिंग लोकल रेवेन्यू एंड एम्पावरिंग कम्युनिटीज। Let's hear more from our correspondent.
The additional district collector development office Pakim district has announced the remarkable success of the Friday Field Farm Day mission, Revival of Barren Land for Cultivation. This initiative has effectively transformed barren land into fertile agricultural field across all 28 Gram Panchayat units, promoting sustainable agriculture and boosting the own source revenue of local governing bodies. The program has provided hands-on agriculture training to farmers, equipping them with essential skills to enhance productivity and self-sufficiency. Under this mission, previously uncultivated lands have been revitalized for maize cultivation and various crops such as potatoes, cauliflower, broccoli and leafy vegetables. The program impact extends beyond crop yield as it has also encouraged active participation from government employees, women and young individuals in the farming sector. By integrating sustainable farming methods, the initiative is paving the way for long-term agriculture development and food security in the region. The success stories emerging from this mission are inspiring, with once barren field in Sikkim now thriving with diverse food crop, fruit tree, flowering plants and timber sapling. This transformation not only supports local food production but also contribute to environmental conservation. With such significant progress, stakeholders are confident that this initiative will further uplift farmers' livelihood and strengthen agricultural resilience across Pakyum district. Dil Ramdulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
एंड सर फिरोजी, जैसे कि हम लोगों ने शो की शुरुआत में कहा कि कल से नवरात्र भी शुरू हैं, तो आकाशवाणी एक बड़ी खूबसूरत सी भेंट दे रहा है अपने लिसनर्स को ऑन दिस ओकेजन। आकाशवाणी यूट्यूब चैनल आराधना इज बीइंग लॉन्च फ्रॉम टुमारो एंड इट विल बी ऑन, यू कैन एक्सेस दैट चैनल टिल 6th of April। इट विल ब्रॉडकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नवरात्रि। The channel is set to offer an immersive spiritual experience for its listeners from tomorrow till the 6th of April. And our correspondent reports that the channel will present a series of exclusive devotional programs, bringing the essence of the festival directly to viewers' homes.
Special Traditional highlight of the Navratri celebrations will be bhajans performed by renowned artists such as Anup Jalota, Narendra Chanchal, Hari Om Sharan and Anuradha Podwal. These renditions will be aired from 6 p.m. to 7 p.m. every day. Speaking about the channel, Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi said that the channel will feature a curated series in which Navratri's each day significance will be highlighted.
Special stories on Navratri highlighting Devi Maa ke anek swaroop, which will be broadcast from 9 a.m. to 9:30 a.m. each day. Special stories about various Shakti Peeth will be released on the channel.
The Navratri celebrations will culminate in a grand live program on Ram Janmotsav directly from Sri Ram Janmabhoomi Mandir, Ayodhya. This special broadcast will take place on 6th April, bringing the divine festivities to audiences across the nation. Listeners can tune in to Akashvani's Aradhana YouTube channel to experience the spiritual essence of Navratri and celebrate the festival in an atmosphere of devotion and reverence. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और वहां की भी हलचल ले ली जाए सायरा।
यस, इन टेबल टेनिस इंडियाज मानव ठक्कर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल एट ऑफ अ WTT स्टार कंटेंडर इवेंट। ही डिफीटेड आंद्रे बाल्टेस्वायर ऑफ जर्मनी 3-2 इन द मेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल एट द WTT स्टार कंटेंडर इन चेन्नई टुडे। Meanwhile, in women's singles, India's Kritvika Roy was defeated 0-3 by three-time world championship medalist Miyu Nagasaki of Japan in the pre-quarterfinals today. The loss marked the end of India's challenge in the women's singles event.
और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें अपने शुरुआती मैच हारने के बाद ये मैच जीत कर वापसी करने की कोशिश करेंगी। गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स ने जबकि मुंबई इंडियंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया था।
And now let's recall the events that happened on this day in India's freedom struggle.
On the 29th of March 1857, freedom fighter Mangal Pandey created a commotion by appealing to his comrades to oppose the use of greased cartridges. The sergeant major ordered his arrest, but the Indian soldiers refused to carry out the order. It was at this point that Mangal Pandey struck a blow at the sergeant major and wounded him and a lieutenant in a fight. Pandey was immediately surrounded by the guards and other European officers in the presence of the commanding officer, General Hearsay. Sensing that his arrest was inevitable, Mangal Pandey shot himself in the chest. He collapsed, bleeding, but was not fatally wounded. He was arrested and brought to trial. Mangal Pandey was sentenced to death by hanging along with Ishwari Prasad. Mangal Pandey's execution took place on the 8th of April and Ishwari Prasad was executed by hanging on the 21st of April 1857.
We also remember freedom fighter Lakshman Nayak, who was martyred on the 29th of March 1943. He led the freedom movement in Koraput district of Odisha and organized the tribal people to fight against inhuman practices like bonded labor. The tribal people called him Gandhi of Malkangir.
Lakshman Nayak was born on the 22nd of November 1899 in Malkangiri, Odisha. A member of Bhuyan tribe, Nayak was attracted to the national movement and became an active member of the Indian National Congress in 1936. He promoted Khadi and made people aware of the freedom movement. The mass participation of tribals in Koraput took a new dimension in the freedom movement after Congress formed a ministry in 1937. Lakshman Nayak took the charge of president of the Congress Primary Committee in Koraput in 1942. He also managed to mobilize the tribal people for various development works like construction of roads, building bridges and establishing schools. He also spearheaded the fight against oppression, sufferings and exploitation.
During the Quit India Movement 1942, Lakshman Nayak led a procession of tribal people to Maithili police station in Malkangiri district with the intention of hoisting the Congress flag on its building on the 21st of September 1942. As the police opened fire, five people died on the spot while 17 people were injured. The injured Lakshman was tried for his leading role in the demonstration and was sentenced to death.
At the break of dawn on the 29th of March, Lakshman Nayak gallantly marched towards the gallows in Behrampur prison. He wished his last.
The sun is true, and so is the moon. It is then equally true that Mother India shall be independent.
Lakshman Nayak was buried inside the jail compound. Though Lakshman Nayak did not live to see free India, he remained imprinted in the minds of millions of people of India as the leader of leaders. We salute the great tribal freedom fighter.
We also remember martyrs Avatar Mishra and Makhdoom Baksh from Jaunpur, Uttar Pradesh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. They fought against the Tehsildar's troops in Jaunpur on the 20th of March 1858. They were captured and hanged on the 29th of March 1858. We salute the great sons of the soil.
And when we remember some more personalities, today we have some personalities from the film industry. Mm-hmm. Well, today we are remembering Sayyed Ishtiaq Ahmed Jafri. And if you're wondering, who is he? Well, duniya unko naam se jaanti hai, Jagdeep ke. Mm-hmm. Yes, today is Jagdeep's birth anniversary. We all know that he made a mark as a comedian who appeared in more than 400 films. Aur unka Surma Bhopali ka jo kirdar tha in the magnum opus Shole, wo to sabko yaad hi hoga. In fact, other characters like Machhar in Purana Mandir, Salman Khan's dad in the film Andaaz Apna Apna, and he directed the film called Surma Bhopali with his character as the protagonist. And he started his career as a child artist in B.R. Chopra's Afsana, and then went on to do films as a child artist again in films like Ab Dilli Dur Nahi, Khwaja Ahmed Abbas's Munna, Guru Dutt's Aar Paar, Bimal Roy's Do Bhiga Zameen, and AVM's Hum Panchi Ek Dal Ke. He was launched as a leading man by AVM in the films Bhavi, Barkha and Bindiya, and went on to do a few more films as the leading man. Lekin jaisa hum sab log ne kaha ke Surma Bhopali ka jo unka kirdar tha, wahi zyadatar etched raha logon ke zehen mein. And we have a dialogue from the film Shole.
Un dono ne bhagne ki koshish to ki hogi na?
Are koshish? Yesi koshish. Jaan tod koshish kari. Magar main bhagne du tab na. Ek ko dheemi hai na padkhani. Ke wo lambu nikla bhagne ko. Maine pakad ke taang jo kheechiye ke jaate ke darwa. Aur kas ke dho diye labade ke chalo chhane. बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों.
आज प्रसिद्ध अभिनेता उत्पल दत्त की भी जयंती है. इन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी. 1950 में मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने इन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में लीड रोल दिया, जिसे काफी सराहा गया. इसके बाद उत्पल दत्त ने सत्यजीत रे की फिल्मों में भी काम किया. गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी और शौकीन इनकी मुख्य फिल्में रही. आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का एक डायलॉग.
बुड्ढा है घर में. कौन बुड्ढा? वही तुम्हारा मालिक भवानी शंकर. ये आपसे किसने कहा कि भवानी शंकर बुड्ढा है? अरे मालिक, जिसका नाम भवानी शंकर हो वो तो पैदा होते ही बुड्ढा हो गया. क्यों है ना? अच्छा जाओ बुलाओ बुलाओ. आप यहां बैठिए, मैं बुलाता हूं. ओके, कम इन यंग मैन. मॉर्निंग.
गुड मॉर्निंग.
आप?
मेरा नाम भवानी शंकर है.
आई जो.
आपका भी कोई जुड़वा भाई है क्या जो यहाँ माली का काम करता है?
नहीं, मेरे यहाँ कोई माली वाली नहीं है. मैं खुद ही अपना बगीचा संभालता हूँ.
अरे रे 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 रे. तब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी.
क्या?
यू नो, मैंने आपको बुड्ढा कह दिया.
क्या हुआ, बुड्ढा तो मैं हूँ ही.
Well, a very, very iconic film. And yes, aapne unki filmi career ke baare mein to bata hi, Sir Firozi. Let's tell our listeners, of course, they all know it, obviously, that he was a pioneering figure in modern Indian theatre. He founded the Little Theatre Group in 1949. And this group mainly enacted English and Shakespearean and Bertolt Brecht's plays in a period which is now known as Epic Theatre Period. Ek aur unki film waise aayi thi, bahut hi zabardast film thi, Shaukeen. Agar aapne na dekhi ho, जरूर देखिएगा. इससे मतलब हंसते हंसते आपका वक्त कैसे बीत जाएगा. There's a song from that film.
जिसने दी है
श्रोताओं, इसके साथ ही अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और सायरा मुश्तबा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।